ओम शांति। जिनकी उपस्थिति से ही तपस्या की खुशबू आती है, जिनके मार्गदर्शन से हर मन को आधार की अनुभूति होती है, ऐसी आधार मूर्त कुशल प्रशासक, नियम और संयम की अद्भुत संतुलन रखने वाली सादगी एवं महान पवित्रता की धनी परम आदरणीय सुदेश दीदी जी हमारे बीच है। हम सभी करतल ध्वनि के साथ दीदी जी का वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। यज्ञ रक्षक प्रभु समर्पिता परम आदरणीय सुदेश दीदी जी आज बहुत सुंदर विषय हमारे सामने स्पष्ट करेंगे, अव्यक्त स्थिति का अनुभव। आप वर्तमान में ज्ञान सरोवर के सीनियर डायरेक्टर हैं, जर्मनी में सेमिनार हाउस मोरिंगन रिट्रीट सेंटर की भी आप डायरेक्टर हैं। आपने 100 से भी अधिक देशों की यात्रा कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित किया है। आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जानकी जी के साथ आपने विदेश की ईश्वरीय सेवाओं को वृद्धि कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दीदी जी ने भारतीय धर्म ग्रंथों का भी बहुत गहन अध्ययन किया है। ऐसी अद्भुत कला रखने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय सुदेश दीदी जी अपने अमृत वचनों से हमें लाभान्वित करेंगे। पुनः हम एक बार दीदी जी का अभिवादन करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद। आप सभी बाप दादा के चैतन्य चमकते हीरों को देख, बाबा के नैनों के नूर, बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने वाले बाबा के बच्चों से मिलकर के जो बाबा से मिलन मनाने आए अथवा सेवाधारी बनकर विश्व सेवाधारी होते हुए विश्व कल्याणकारी होते हुए विशेष सेवा के निमित्त सेवाधारी आए हैं। सेवाधारियों का तो विशेष मान अथवा भगवान को भी बहुत, बाबा भी प्राउड है अपने बच्चों को देख करके कि बाबा विश्व कल्याणकारी रूहानी सेवाधारी है, और आप सब बच्चों को भी देख करके जो इंदौर से आए, रेउन से आए हैं। अब इंदौर को बाबा ने एक समय मिनल मनाते हुए कहा था, जिनको अभ्यास हो इंदौर रहने का, इंदौर इंग्लिश में है अंतर्मुखी स्थिति। तो आप सभी आत्माएं अंतर्मुखी स्थिति का अभ्यास करने वाले, सदा सुखी रहने वाले बाबा के बच्चों को फिर से ओम शांति और नमस्ते। आज का विषय बाबा का अति प्रिय अथवा पहला लेसन, सो अंतिम लेसन, आदि की पढ़ाई सो अंत की पढ़ाई, और जीवन भर की कमाई का लेसन है। अथवा ये कहेंगे कि क्लास है। एक्चुअली बाबा की तो रोज की क्लास, रोज की मुरली। हम बच्चों को आज का जो हमको क्लास कराने के लिए टॉपिक दिया है, बाबा तो रोज वही क्लास कराते हैं। आते ही स्मृति दिलाते हैं और ओम शांति का मंत्र पक्का कराते हैं। ओम स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं और बार बार मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, आप आत्मा भी शांत स्वरूप हो। कल परसों की मुरली में हर दो साइड लाइन के बाद जिसको भी देखो, किस रूप से देखो, आत्मा स्वरूप से देखो। कहां देखो? आत्मा को उसकी भ्रकुटि के तख्त पर बैठा हुआ देखो। और याद कराया, हे रूहानी बच्चों, हे आत्माओं, सुनते हो? बच्चों ने कहा, जी बाबा, हम आत्माएं सुनती हैं। तो ये बार बार अभ्यास बाबा क्यों कराते? क्योंकि आत्मा ने, हम आत्माओं ने साकार शरीर लेते लेते कलयुग के अंत में जब तक पहुंचे, सीढ़ी उतरते कहां तक पहुंच गए? सतो प्रधान स्टेज से उतर करके तमो प्रधान स्टेज पर आ गए। गोल्डन एज से आयरन एज में पहुंच गए। आत्मा को जंक लग गई, अथवा बाबा ने कहा सोने में खोट पड़ गई। लोहा बन गए तो जंक लग गई, तो अंदर चली गई। तो बाबा को फिर से आत्मा को अंतर्मुखी बना के अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाई। और वास्तविक स्वरूप की स्मृति है अपने असली स्वरूप की स्मृति, निराकारी अवस्था, अशरीरी अवस्था। अशरीरी, अशरीरी अथवा बॉडीलेस। उसका अभ्यास कैसे करें? जैसे शरीर बन का अभ्यास किया, लौकिक मां बाप ने कराया, जन्म लेते ही क्या अभ्यास कराया, बार बार तू मेरी बड़ी लवली बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ा मीठा बच्चा है, तू तो मेरा फरिश्ता बच्चा है, तू तो मेरी रानी बेटिया है। बिटिया बेटा बेटा क्या के, बिटिया बेटिया क्या करके पक्का करा दिया। शरीर का जो देह का भान पक्का हो गया कि हम बेटी हूं या बेटा हूं। देह का भान, अभिमान तो पीछे आया, भान मां बाप ने दिया। हमको अगर कहते तुम लड़का हो, तुम लड़का हो, हम पक्का कर लेते हम लड़का है, पर तुम लड़की हो, तुम कुमारी हो, तुम बिटिया हो, हमने यही पक्का कर लिया। हमारे शरीर का स्वरूप को ही स्वरूप की स्मृति दिलाई। तो ब्राह्मण बने हम, नया जन्म मिला, तो बाबा भी हर मुरली में क्या अभ्यास कराते? बच्चे तुम आत्मा हो, तुम निराकारी हो, अब आत्मा परंतु साथ साथ स्मृति स्वरूप भी दिलाते अथवा दिव्य दर्पण भी देते कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हो, चैतन्य चमकता सितारा हो। आज भी कहा मुरली में, कहते हैं भ्रकुटी बीच चमकता है एक अजब सितारा, पर वो कौन सा सितारा है? ये हम सितारे भाग्यवान हैं, धरती के सितारे हैं, बाबा के नैनों के नूर है, चैतन्य सूक्ष्म ज्योति है। पर अभी अभ्यास कैसे करें? सिंपल बात बाबा ने बताई कि बार बार अपने आप को याद कराओ और इसका अर्थ समझो कि अशरीरी का अर्थ क्या है। शरीर नहीं हूं मैं, ये ज्ञान तो मिल गया, समझ भी आ गई, परंतु अभ्यास अगर नहीं है तो फौरन अपने शरीर का रूप ही याद रहेगा, शरीर का भान ही पक्का रहेगा और भान के साथ साथ अभिमान भी पक्का हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते कि ये अभ्यास करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमको लक्ष्य परफेक्ट बनने का है, तो जो डिफेक्ट आ गया अथवा जो कमी आ गई हमें अंदर, कमजोरी आ गई, उसको दूर करना है। कमजोरी तो पीछे बीमारी के रूप में आ गई। आज बाबा ने कहा कि आत्मा भी रोगी हो गई, तो वैद्य जैसे दवाई देता है तो साथ साथ परहेज भी बताता है। तो बाबा ने फिर ये प्रैक्टिस बताई कि अपने आप को बार बार आत्मिक स्थिति में स्थित करो। बॉडी लेस मतलब क्या है? सचमुच देखा जाए तो हम ये जो हमारा शरीर की ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, इस रथ पर ही सवार हैं राजा दशरथ बनके। दशरथ ये शरीर रूपी रथ पर विराजमान है, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं यानी आंख कान नाक मुख जबान और त्वचा, स्पर्श करने की शक्ति। तो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी आंखों से देखते हैं तो काला है कि गोरा है, सुंदर है वस्तु है या वस्तु अच्छी नहीं है, आंखों से देखते हैं तो ज्ञान मिलता है, कानों से सुनते हैं ध्यान जाता है अच्छा या बुरा है, काम की बात है या गपशप फालतू की बात है, महावाक्य है मधुर वाक्य है या कटु वचन है, मुख से खाते हैं खट्टा है कि मीठा है पता चलता है जबान से, बोलते हैं तो मधुर बोल है या कड़वे बोल है, यानी इससे हमको ज्ञान मिलता है। तो इसलिए इसको ज्ञान, ज्ञान का मतलब अवेयरनेस आ जाती है। शरीर के भान से प्रकृति को भान नहीं है, ये भी प्रकृति का तत्व है, शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है, परंतु हम इस शरीर रूपी पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रियों के रथ पर विराजमान हो करके राजा दशरथ तो बन गए, परंतु इस रथ को चलाना कैसे है, कितना समय यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो उसके भान में ना आवे, भान होते भी अभिमान ना आवे, इस बात के ध्यान रखने के लिए, क्योंकि जब देह के भान में आते हैं तो देह पांच तत्वों की बनी हुई है। पांच तत्वों की यानी धरती, शरीर जो है ये मिट्टी का पुतला बोलते हैं, हड्डी मांस का शरीर है, ये प्रकृति का एक तत्व है। शरीर छोड़ते हैं अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, पांच तत्व में मिल जाते हैं। तो जिस भान में हम रहते हैं, जिस संग में और कॉन्शियस में रहते हैं, उसका रंग लगता है अथवा उस चीज का प्रभाव पड़ता है। तो अब हम शरीर को, अगर शरीर भान से यूज करते हैं और अभी मान के मान करके चलते हैं, बस अभी मैं तो फलाना हूं ना, और फिर अभी मान से मान या अपमान के भेदभाव में आ जाते हैं, और फिर अधीरियता हो जाती है, अभिमान होता है, तो मेरी बात अभी अभिमान, क्रोध आ जाएगा, नहीं माना, अपमान महसूस होगा, यानी विकारों का विकृत रूप, प्रकृति के पांच तत्वों में पांच विकार समाये हुए हैं, उसका संग का रंग लग जाता है अथवा असर पड़ जाता है। आत्मा के अंदर वो प्रकृति की शक्ति काम करने लगती है, आत्मा की शक्ति परमात्म शक्ति काम करती है, परमात्म गुण काम करते हैं, और शरीर के भान में रहते हैं तो शरीर के पांच तत्व काम करते हैं। अब पांच तत्व में पहला तत्व ये कौन सा है? पहला तत्व धरती है। तो प्रकृति के तत्वों के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, धरती में आकर्षण है। मानो मैं मिट्टी का टुकड़ा, ये मेटल का टुकड़ा हाथ में लेती हूं, इसको मैंने उठा के रखा, जैसे ही मैंने छोड़ा कहां गिरा? जमीन पर गिरेगा ना। कितनी भी ऊंची चीज रखी हो, वो मिट्टी का पत्थर या पत्थर का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा नीचे ही आके गिरेगा। तो ये देह का भान हमको ऊंचा नहीं उठने देता, ये नीचे ही खींचता है। आत्मस्मृति में हम ऊंचे उठते हैं, देह के भान में नीचे आते जाते। क्यों? कि प्रकृति का पहले तत्व में आकर्षण है। तो हमारे अंदर आकर्षण की शक्ति, आसक्ति, खिंचाव, झुकाव, लगाव, प्रभाव, ये कमियां कमजोरियां आनी शुरू हो जाती है, बाहर मुखी बन जाते हैं। आंखों से बाहर से देखा तो बाहर की चीज सुंदर लगी, अच्छा खाना देखा, लोभ जागृत हो गया, पेट भर गया, पर आंख के भूखी हैं और खाते रहेंगे। तो मतलब क्या है कि ये प्रकृति का आकर्षण है। दूसरा, हमारा शरीर में कौन सा तत्व है? पानी और खून, 80%। तो जहां हमारा शरीर का रिश्ता खून का रिश्ता है, वहां क्या है? ये पांच तत्वों में पांच विकार समाये हैं। हमको अशरीरी बनना है परंतु निर्विकारी बनना है। तो ये जो पहला शरीर का भान आकर्षण है, देह का भान भारीपन ले आता है, इस खिंचाव से परे जाना है। मैं अशरीरी आत्मा, शरीर वाली नहीं हूं, शरीर को धारण किया है पर शरीर नहीं हूं। अच्छा दूसरा विकार, दूसरा तत्व है, पांच तत्वों में पानी और खून शरीर में, तो जो हमारा ब्लड कनेक्शन है वहां मोह पैदा होता है। कहेंगे मेरा बच्चा है ना, मेरी बहन है ना, मेरा भाई है ना, पड़ोसी बीमार होगा तो जितनी चिंता नहीं होगी, कई देर से बच्चा आया स्कूल से डर नहीं होगा, अपना बच्चा थोड़ा देर से आया इमेजिनेशन डर हुआ, पता नहीं कोई किडनैप न करके ले जावे, एक्सीडेंट न हो गया हो, देर से क्यों आया है, चिंता लग जाएगी, बीमार होगा रात को नींद नहीं आएगी। यानी हमारे अंदर मोह पैदा होता है, इमोशंस जागृत होते हैं, दुख खींचता, दुख बढ़ता है, मोहवश आत्मा दुखी होती है, कामनाएं बढ़ती जाती हैं, बच्चों को पालना करनी है, लोभ की वृत्ति जागृत होती है। अब तो पहले तीसरा तत्व है हमारे अंदर अग्नि, शरीर का टेम्परेचर गर्म, अगर शरीर शरीर छूट गया तो टेम्परेचर की बात ही नहीं, हीट जेलसी आ जाएगी, देहभान से नफरत जागृत होगी, जी जलने लगेगा, क्रोध 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 दूसरे पर जल्दी करेंगे, कोई ने भूल की उसको गालियां देने लग जाएंगे, ये क्रोध की अग्नि। अब गुण हमारे विचार और व्यवहार को बदल देती है, दृष्टि और वृत्ति को बदल देती है, संस्कार में दिव्यता खत्म, जो दिव्य संस्कार थे, प्रेम के संस्कार थे, पवित्र संस्कार थे, वो बदल गए। इसलिए बॉडी लेसनेस, लेस ही लेस बॉडी को यूज करो, यूज जरूर करो पर सोल कॉन्शियस होके करो, तो बॉडी कॉन्शियस को छोड़ो। अशरीरी का मतलब कि बॉडी की जो पांच तत्वों ने इतना कॉन्शियस कर दिया, जो विकारों का स्वरूप बन गए, पांचों तत्वों ने पांच विकार अंदर ला दिए, हमको पता ही नहीं चला, हम धीरे धीरे विकारी बन गए। अब क्रोध की अग्नि बाहर की, और ईर्ष्या की, वैर की, विरोध की, ये अंदर की अग्नि, कंपटीशन कंपैरिजन, बदला लेने की भावना। तो ये सब क्या है? सूक्ष्म क्रोध के अनेक रूप, कंट्रोल, क्रिटिसिज्म, कमेंट, वो मुख से बोलेंगे, आंखों से दोष ही दिखाई देगा, ये भान, आंखों को बार बार कोई चीज देख ली, किसी की कमी देख ली, वो कमी इतनी अंदर छप गई जो बार बार वो कमी को देख के गुस्सा आता रहेगा, कोई बात सुन ली एक बारी कान से, वो बार बार रिपीट करके अंदर उसके लिए जोश वैर भाव पैदा होता जाएगा, वो अंदर भड़कती रहती है आग। चौथी बात है एयर, श्वास, ऑक्सीजन अगर नहीं है, हवा, श्वास निकल गया एयर बॉडी में। अभी देखो तो ये एयर में लोभ समाया है, भूख नहीं है हमको, घर में आए कहते आज मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, खाना नहीं है, पर जैसे ही घर के अंदर आए, चिप्स तले हुए हैं, पकोड़े तले, आज समोसे बने हैं, चलो ज्यादा नहीं खाऊंगा, एक दो ही खाऊंगा, इतना ही सिर्फ टेस्ट करूंगा, सारी प्लेट खाली, ये भी नहीं सोचा दूसरे भी कोई को खाना है। भाई अखबार में पढ़ा अथवा रेडियो पर सुना या एडवर्टाइजमेंट देखा, दुकान पर गए, बाई वन गेट टू थ्री फ्री, एक खरीदो दो मुफ्त मिलेगा। अभी जरूरत नहीं है, परंतु क्योंकि सुने है, चलो अच्छा ले लेते हैं। पड़ोसी के पास अच्छा सोफा है, बहुत अच्छा, उसका घर अच्छा सजा हुआ है, उसके घर में पर्दे बहुत अच्छे हैं, अच्छा देखूं, मैं भी खरीद लेता हूं। वो एयर में फिक आकर्षण इस प्रकार का जो फैलता है, वो वातावरण, हम भी ये ले लेते हैं, हमको चाहिए भी नहीं, खरीद करके ले आए, सारी उम्र घर भरता जाता है, याद यूज भी नहीं करते। चौथा है आकाश, पांचवा आठवा है आकाश। आकाश इतना बड़ा है जो कहता है सब कुछ मेरे में समाया हुआ है, पानी भी इसमें, तो हवा भी इसमें, तो आग भी इसमें, पांचों तत्व में आकाश अनलिमिटेड है। कहते इसका तो सिर आकाश में बैठ, आकाश में बैठा है, मतलब क्या अभिमान, मैं सबसे ऊंचा हूं, मेरे कंट्रोल में सब कुछ रहे, जो मैं चाहता हूं वो मैं करूं। तो कहने का मतलब ये है, मान शान नाम की महिमा हो, मान अपमान का भान। तो ये देह के अभिमान में हम पांच विकारी बनते हैं, जितना देह भान से न्यारे होते जाते हैं, ये पांच तत्व कम यूज होते हैं। अशरीरी निराकारी स्वरूप, बॉडीलेसनेस, तो खिंचाव भी नहीं होगा, प्रभाव भी नहीं होगा, वृत्ति भी बदल जाएगी, इसीलिए मेरा निराकारी स्वरूप का अभ्यास कि मैं आत्मा शरीर भान से न्यारी हूं, और न्यारी हूं तो पार हूं, इन आकाश तत्वों से पार की रहने वाली हूं। अब तत्वों को भी देखेंगे ना, तो यह तत्व भी सूक्ष्म, जितने जितने अहंकार सबसे सूक्ष्म है और सबसे पावरफुल है। अहंकारी अभिमानी तो अभी ऐसे ही, धरती सबसे नीचे, तो जितना जितना पाविकारो, धरती मोटा रूप है, पानी को पकड़ नहीं सकते, मूवमेंट है, आग में हाथ डायरेक्ट नहीं डाल सकते, ऊपर उठती है, हवा को पकड़ नहीं सकते, हाँ पर्दा हिल रहा है, देख रहे हवा है, तो हवा आपको टच कर रही है, आप टच नहीं कर सकते, आकाश आप पकड़ नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो ये पांच तत्व भी जितने जितने सूक्ष्म होते जाते, उतने ऊंचे होते जाते हैं, पर ये शरीर भान का, और आत्मा पांच तत्वों के पार की रहने वाली है। पांच तत्वों के पार कोई विकार नहीं है, वो ब्रह्मलोक है, वो अखंड ज्योति महातत्व है, वो शांत धाम, शांति धाम है। तो मेरा निराकारी स्वरूप शांत स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। इस समझ से योग में अभ्यास करेंगे तो अपनी कमजोरियों की फौरन परख आ जाएगी, बॉडी लेस बन जाएंगे। गर्मी लगती है तो फौरन पंखा यूज करते हो, ठंडा पानी यूज करते हो। ऐसे अपनी आत्मिक स्मृति, मैं आत्मा कैसी हूं, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, मैं इस लोक की रहने वाली नहीं हूं, मैं निराकारी वतन की रहने वाली हूं। अशरीरी आई थी, अशरीरी बन के जाना का मतलब क्या, कि मैं अशरीरी आई थी तो पवित्र और निर्विकारी आई थी, शरीर में आई देह के भान में आई, विकार बढ़ते चले गए। तो मैं अभ्यास अशरीरी बनने का, चलते फिरते उठते बैठते जो पहला सबक है वही लास्ट सबक है अशरीरी बन करके। तो अपने को भी मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मोह रूप आत्मा नहीं हो। ज्ञान मिले नष्ट मोहा, मोह को नष्ट करना है। मोह देह से होता है, देह भान से होता है, वस्तुओं से होता है, वैभव से होता है, आसक्ति खान पान में बढ़ती है, चीजों से बढ़ती है। तो मैं शरीर से न्यारी आत्मा, पांच तत्व मुझे नहीं खींच सकते, तो मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप प्रकृति की मालिक हूं। इस तत्व को जैसे यूज करूं, इन आंखों को ज्ञान की ज्योति से यूज करूं, बुद्धि को, तो इसलिए आत्माभिमानी अगर है, निराकारी है तो निराकारी में शुद्ध आत्मा हूं। तो आत्मा क्या है, आत्मा के गुण याद आएंगे। जैसे पांच तत्व अपने आप ही बढ़ते गए, मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो बाबा कहते हैं अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, आत्मा के गुण काम करने लग जाएंगे। क्योंकि आपने अपने संकल्प की शक्ति में आत्मिक स्थिति को डाल दिया तो वो काम करने लगेगी, स्मृति आई काम करने लगेगी, विस्मृति हो गई काम नहीं करते। घर में कितना भी धन पड़ा हो, भूल गया कहाँ रखा है, चीज किचन में कोई चीज यूज करनी है, भूल गया कहाँ रखा है, यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही स्मृति स्वरूप, स्मृति लब्धा नष्ट हुआ, तो ये स्मृति कि मैं आत्मा शरीर भान से न्यारी, देह भान से न्यारी, मान अपमान से न्यारी, स्वमान में रहने वाली, स्वयं को मानने में आत्मा, सिर्फ जानने की बात नहीं। जैसे मान लिया ना मेरा नाम फलाना है, मेरा रूप ये है, 2000 का 10000 का भी फोटो खिंचा गया होगा ना किसी जगह आप गए हो और आपको फोटो भेजा है, आपकी नजर अपने शक्ल पर फौरन जाएगी। हजार लोगों के बीच में आपका फोटो आप पहचान लेंगे, क्यों, बार बार देखा है। तो बाबा ने ये अभ्यास किया, ब्रह्मा बाबा ने, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बेटा नारायण आत्मा है, पालू का दादी निर्मल शांता का नाम पालू था, पालू आत्मा है, पालू आत्मा है। बेटे का नाम नारायण था, नारायण आत्मा है। वाइफ का नाम यशोदा था, यशोदा आत्मा है। तो आत्मा जब कहा तो फिर आत्मा कैसी हूं मैं, मेरा असली स्वरूप शुद्ध शांत चैतन्य चमकता सितारा बिंदु स्वरूप हूं। ये देह भान नहीं है, देह हूं ही नहीं मैं, ये तो सिर्फ यूज करने के लिए मिली है, मैं तो यहां मेहमान होकर के आया हूं। वो मेहमान हुआ तो यूज किया चीजें, यूज किया उठा करके नहीं साथ में रख ले जाएंगे। वो हमने कॉन्शियस में पक्का कर लिया मैं फलाना हूं, तो शरीर का भान हमारे साथ रहता है। तो इसलिए अशरीरी का अभ्यास करते करते ये व्यक्तित्व जो व्यक्ति स्वरूप दुनिया वाला रूप ये बदल कर जाएगा। तो आत्मा मन बुद्धि और संस्कार, मैं आत्मा हूं तो फिर मन बुद्धि और संस्कार किसके, आत्मा किसकी संतान है, परमात्मा की संतान है। तो मन की शक्ति संकल्प शक्ति है, आत्मा की स्थिति में हूं और परमात्मा की संतान हूं तो मेरे संकल्प कैसे होंगे, सोच कैसा होगा, मेरे विचार कैसे होंगे, मेरी दृष्टि आत्मिक स्वरूप में दूसरे को देखेगी ना, ऑटोमेटिकली भाई भाई की दृष्टि होगी। तो अव्यक्त स्थिति, व्यक्तियों की तरह देखने वाली भाव नहीं रहेगा, अव्यक्त स्टेज, अशरीरी होने का अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते आत्मा के जो गुण हैं, पहली बात ज्ञान, ये पांच विकारों को बदले में पांच गुण आत्मा के ज्यादा यूज होंगे, बाहर मुखी से अंतर्मुखी हो जाएंगे। ये मुख के जो ऑर्गन्स बाहर देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, वो अपने आप को देखना शुरू करेंगे। तो आत्मदर्शन, तो आत्मदर्शन में ये नहीं कि बिंदु 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 नजर आऊं, आत्मदर्शन माना आत्मिक स्थिति के गुणों का स्वदर्शन। तो ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति, सत्यता, विश्व कल्याण, तो उसमें मेरी स्थिति ऊंची होती जाएगी ना। तो बाहर का जो तत्वों का प्रभाव है, विकारों का प्रभाव है, वो नहीं पड़ेगा, वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में अभ्यास किया, स्वमान में रहने लगे, मैं तो भगवान की संतान हूं, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, दिन रात मैं तो बाबा के नैनों का नूर हूं, मैं तो बाबा के दिल तक पर विराजमान हूं, जो बाबा ने हमको टाइटल दिए, मैं तो होली हंस हूं। तो हमें बजाय अवगुणों का अभ्यास अथवा प्रभाव होने के बजाय परमात्म पिता के संस्कार, विश्व कल्याण के संस्कार, क्षमा के संस्कार, प्रेम के संस्कार, पवन बनने के संस्कार, वो हमारे अंदर स्वाभाविक जागृत हो जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने साकार मुरलियों से रोज की मुरली का अभ्यास करते, प्रैक्टिकल में जो अभ्यास किया, ज्ञान को विज्ञान बना दिया, यानी एक्सपेरिमेंट किया, खाली ज्ञान को ज्ञान नहीं, सृष्टि चक्र का ज्ञान, वो तो बच्चा भी रिपीट कर लेगा, ब्रह्मा का ज्ञान, कल्पवृक्ष का ज्ञान, वो तो कोई अज्ञानी को भी कहो तो पढ़ के सुना देगा। अभ्यास से अनुभव होता है, अनुभव से शक्ति बढ़ती है, अनुभव से निश्चय होता है। अभ्यास करने से आत्मा के अंदर प्रैक्टिस बढ़ी, परफेक्शन आती है। तो मन के संकल्प शुद्ध होते हैं। संकल्प किस प्रकार के चलते हैं? रोज की बाबा की मुरली का अभ्यास करते हैं। तो बाबा ने कहा हर पांच पांच मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद ड्रिल करना सीखो। जो बाबा ने होमवर्क दिया वो करते रहेंगे तो अव्यक्त यानी व्यक्तियों की तरह हमारा बोल नहीं होगा, साधारण व्यक्तियों की तरह हमारी दृष्टि देह भान वाली नहीं होगी, साधारण अभिमानियों की तरह हमको मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वमान में रहेंगे, मुख से मधुर बोल निकलेंगे, मधुर महावाक्य बाबा के सुनाएंगे, चित हर्षित, हर्षित चित रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे। तो ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां भी बदल जाएंगी। अव्यक्त स्थिति का मतलब हमारी ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां वातावरण से प्रभावित नहीं होती। अव्यक्त बाप दादा को देखा, स्टेज पर कुछ भी होता रहे, स्टेज संभालने वालों को स्टेज संभालनी है, आवाज भी हो रहा है। बाबा को एक एक बच्चा मिलने आता था तो कोई फल बाबा किसको दे रहे हैं, कभी टोली देना चाहते हैं, जिनको स्टेज संभालनी है ना वो उठा के पीछे रख देते थे। बाबा फिर भी दृष्टि देते रहते थे साथ में, वो कॉन्स्टेंट प्रवाह। बाबा के अव्यक्त स्थिति में स्टेज नहीं बदली, आए अभी भी कल देखना अच्छी तरह से, एक रस स्थिति। तो अव्यक्त स्थिति का मतलब एक एक गुण का रहस्य समझ करके उसका रस लेना और उसके वातावरण बनाना, शांति का वातावरण, प्रेम का वातावरण, पवित्रता का वातावरण, खुशी का वातावरण, शुभ भावना, शुभ कामना, भावना बदल गई, कामना बदल गई। व्यक्त भाव से एकदम जितना जितना शरीर से न्यारे होते चले गए, व्यक्त देह से न्यारे हो गए, व्यक्त भाव से न्यारे हो गए, और यही समझा कि तो थोड़ा समय के लिए अभी वापस घर जाना है, और शरीर ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होके रहेंगे तो ऑटोमेटिकली गुण हमारा स्वाभाविक गुण जो है निराकारी सो निर्विकारी बनते जाएंगे। जितना जितना आत्म निराकारी ही सो निर्विकारी, और निर्विकारी के साथ अहंकार खत्म, निरहंकारी। ये बाबा ने अभ्यास करते लास्ट का लेसन यही दिया, कोई के भी प्रभाव में नहीं आना है, प्रभाव में आए माना अभाव बन गया, तो ये क्या हो गया, सूक्ष्म बन गए। सूक्ष्म वतन क्या है? पांच तत्व नहीं है, सिर्फ लाइट का तत्व है। तो जब योग में भी बैठते हैं तो मैं ये पांच तत्व का पुतला नहीं हूं, पांच तत्व का पुतला तो सिर्फ शरीर का एक कपड़ा है, असली तो मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूं, प्रकाश की काया हूं, ट्रांसपेरेंट हूं। जैसे सूर्य चमकता है तो लाइट है, आसपास सारी किरणें फैलती है, घर की लाइट जगती है, आसपास किरणें ऑटोमेटिकली आती है। तो अव्यक्त स्वरूप यानी ये व्यक्त का वस्तु नहीं हूं, निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ तो जो वहां का स्वरूप है वो मेरा नेचुरल हो जाएगा ना, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं लाइट हूं, चैतन्य लाइट हूं, अब ये लाइट भी अंधेरे को खत्म करने के लिए कभी फाइट करती है क्या? लाइट नेवर फाइट्स टू डिस्पेल द डार्कनेस। लाइट जगी, अंधेरा खत्म हो गया, सूक्ष्म बनते गए। अव्यक्त माना सूक्ष्म। फूल की सुगंध कहती है कि मैं सुगंधित हूं, अपने आप ही सुगंध फैलती है, वातावरण बदल जाता है। तो अव्यक्त का मतलब दिखावा नहीं, पर दिखा देना। सूरज जो है चमक दिखाई देते ही अंधेरे को खत्म करके दिखा देता है क्या चीज कहा है। तो हमको भी हमारे असली गुण कौन से है, हमारी असली स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। मैं प्रकाश की काया हूं, लाइट की बॉडी हूं। अपने अंदर हर एक चीज अपने आप को ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ने लगेगी, अपनी कमजोरी को आप पे ही महसूस करेंगे, दूसरे के गुण को ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगी। और किसी की प्रशंसा उनके गुणों को देख के स्वाभाविक रीति से करेंगे, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब बाबा की दृष्टि हमारे बच्चों में के लिए प्यार है। हम पता नहीं हमारे ख्यालात कहाँ कहाँ जा भी रहे हों, बाबा कहता है, बाबा सितारे चमक रहे देख रहा है। आज मस्तक पर तीन सितारे चमक के देखे, आज तो तीन लकीर देखी, आज सिर पर ताज देखा, अभी हमारा मोटा ताज तो कोई नहीं लगा हुआ, पर लाइट का ताज देखा, पवित्रता का ताज देखा, भाग्य की रेखाएं देखी। तो भगवान की भावना व्यक्तियों वाली नहीं, निराकार के साथ, कल्याणकारी के साथ, अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त दृष्टि है। तो हमारी स्थिति में अव्यक्त सूक्ष्म, हमारी भी सूक्ष्मता बढ़ती चली जाएगी, दिखावा खत्म हो जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा। मांगने की बात नहीं है, हमारा अपनी कर्म इंद्रियों पर स्वतः ही आत्मा का अधिकार हो जाएगा। अभी प्रकृति का अधिकार हमारे पर ज्यादा है, विकारों का अधिकार ज्यादा है, विकारों को युद्ध करना पड़ता है। फिर विकार से युद्ध नहीं करना पड़ेगा, माया दासी हो जाएगी, हम मालिक बन के रहेंगे। योग लग गया, आत्मिक स्थिति में स्थित हुए, विकार भस्म होते गए, परमात्म शक्ति आने लगी। तो अव्यक्त बाबा ने चलते फिरते उठते बैठते, वो दृष्टि में ऐसी भावना थी जो बाबा की दृष्टि करंट का काम करती थी। हाथ टच करो ऐसे करंट लगता था, शक्ति लगती थी, वैसे पावर महसूस होती थी, सूक्ष्म शक्ति। दृष्टि में स्नेह समाया हुआ था, वाणी में वरदान थे। तो बाबा ने अभ्यास किया साकार में रह के, साकार मूल्य ही तो ना। अभी बेशक अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं तो अव्यक्त मुरली जो साकार बाबा ने प्रैक्टिकल रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस किया, अव्यक्त मुरली में वो शिक्षा देते हैं। तो अव्यक्त लोग क्या है, फिर कैसा बनना है? ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल समान पवित्र स्वरूप है, पवित्रता का स्वरूप है। बस हमारा पहला गुण शुद्धि और पवित्रता है। फिर तपस्या स्वरूप भी है, शंकर क्या है? तपस्वी रूप है। भाई सांप जो है वो गले के हार बन गए, यानी जहरीले विकार उनको खत्म करके अवगुणों को गुणों में परिवर्तन कर दिया। श्रृंगार बन गए गुण, अवगुण जो है जहरीले हैं, खुद को भी दुख देते हैं, दूसरे को भी दुख देते हैं। सर्वगुण संपन्न साक्षी दृष्टा, बाबा को साथी बना के चलना, अकेले नहीं है हम, बाबा मेरे साथ है, तो बाबा की कंपनी और कंपेनियनशिप, तो अपने आप ही बाबा के कैनपी के अंदर, छत्र छाया के अंदर रहेंगे। छतरी खुल गई। अव्यक्त स्थिति का मतलब ये है बाबा के साथ सर्व संबंध। तो हमारी उस संबंधों से इस दुनिया के संबंध का प्रभाव कम हो जाएगा। आत्मा का संबंध परमात्मा से जुटा तो मन बाबा से जुटा रहेगा, मन मना भाव अपने आप रहेंगे, बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलेगा, चेकिंग पावर ठीक होगी, चेक करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, संस्कार जागृत हो जाएंगे, दिव्यता के भगवान की संतान हो। बाप के साथ शिक्षक का संबंध है तो जैसे संस्कार बनते कैसे हैं, या तो माँ बाप से, या फिर पढ़ाई से, या फिर संग से, या फिर अपने आत्मिक स्वरूप से। चारों ही बातें अभ्यास करा रहे बाबा, रोज की कंपनी देते हैं, ब्राह्मण कंपनी मिलती है, एक दो से सीखते हैं। तो अव्यक्त का मतलब है कि देह के भान से, देह अभिमान से, मान अपमान से परे स्वमान में स्थित रहना, और रूहानी नशा रहे, मैं किसकी संतान हूं, किस मेरा साथी कौन है, और मैं क्या करने आया हूं। दादी जानकी के तीन मंत्र, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करने। अव्यक्त स्थिति कल्याणकारी स्थिति, तेरे मेरे का भेदभाव नहीं है, सबको एक ही दृष्टि से बाबा देखते हैं। लाश का दाना भी बाबा कहता है नंबर वन दाना है, प्यारा दाना है, बाबा को पहचान तो लिया, अवगुणों की गिनती नहीं की, एक गुण है उसी को महान समझ के महान बना दिया। तो एप्रिशिएट करने का संस्कार आएगा, व्यक्तियों की तरह अवगुण पर फोकस नहीं होगा, अव्यक्त अवगुणों को इग्नोर करेगा और शुभ भावना से मदद करेगा खत्म करने की, और गुण को विशेष महत्व दे करके रिस्पेक्ट देगा, उस बीज को सींचेगा, जिससे कि जैसे माली है बीज की क्वालिटी को देख के जल देता रहता है। तो अव्यक्त स्थिति क्या है, शुभ भावना शुभ कामना, वृत्ति श्रेष्ठ, दृष्टि श्रेष्ठ, क्षमा भाव, कल्याण का भाव, वो आत्मा के गुण काम करने लगे ना, दिव्यता के संस्कार बन गए। अपने आप ही सहन, कोई बात अगर हो भी सही, सहन शक्ति आ गई। बाबा ने कहा तुम शीतलता के देवता बन जाओगे, कोई अपमान भी करेगा तो अपमान लगेगा नहीं, स्वमान की शक्ति ज्यादा है, अपमान तो नीचे की चीज है और मैं ऊपर बैठा हूं, कोई आकाश में थूकेगा उस पर ही आएगा ना, कोई पत्थर ऊपर है, ऊपर ही बैठा हूं ना अव्यक्त वतन में पर ऊपर बैठे ही नहीं, अव्यक्त लोक में बैठा ही नहीं हूं, बैठा हूं नीचे, चाहता हूं अव्यक्त लोक का अनुभव। तो व्यक्त भाव से परे अशरीरी स्थिति का अभ्यास गुण संपन्न स्वरूप और अशरीरी के साथ निराकारी निरंकारी स्थिति से, आकाश से भी ऊपर वतन में वतनवासी हूं, तो वतनवासी मेरे साथ नीचे आ जाएगा, तो चलते फिरते फिर बाप दादा कंबाइंड, तो हम भी अव्यक्त बन गए, माना बाप दादा कंबाइंड हो गए। समय की सीमा है, अभी समय ज्यादा ले लिया, पर यह है कि अभी अपने स्वरूप को इतना अव्यक्त बनाए। ओम शांति।
दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। करतल ध्वनि के साथ हम दीदी जी का धन्यवाद करते हैं। सदा सबको आगे बढ़ाती बनकर आप बैकबोन, सफलता और उदारता से संभाल रही है आप यज्ञ की डोर। सदा ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मण परिवार की दुआएं बरसते रहे दीदी आपकी ओर, सदा आपकी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का।
शब्द है साक्षी होके बाबा को साथी बना के चलो तो अव्यक्त स्टेज साथ रहेगी, साथ बन के जाएंगे।
तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।